الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 3 سے، اور اس میں جو آیات ابھی چل رہی ہیں معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں ہم ان کے، وہ آیات نمبر 59، 60 اور 61، 62 ہیں. تو ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی شان بتائی، اپنا اپنا حال یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام غیب کے خزانے ہیں، تمام غیب کی کنجیاں ہیں، اور ان کا علم جو ہے وہ اس کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے. آگے اس کی اور بہت ساری آیات اس کے اندر، مطلب اور اس کے اندر کافی تفصیل ہے. تو ہم معروف و مسائل جو ان کے پڑھ رہے تھے پیج نمبر 347 کے اوپر تھے، تو یہاں تک ہم نے یہی پڑھا تھا کہ علم غیب کے بارے میں جو عوام الناس میں ایک سمجھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط سمجھ ہے کہ جو بھی چیز نہ ان کی نگاہوں سے غائب ہوتی ہے اس کو وہ غیب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ غیب اور غائب میں، یعنی جو اردو کی اصطلاح میں غائب کہا جاتا ہے، اس میں فرق ہے. تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو مختلف علوم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں، جیسے ستاروں کا علم، کہ ان کو پڑھ کر کے، ان کے پیٹرنز کو دیکھ کر کے جو فیوچر کے احوال بتا دیتے ہیں، جس کو علم النجوم کہا جاتا ہے، اور ہم ان کو نجومی کے نام سے جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، یا رمل کا علم، یا جو ہے وہ جفر کا علم، یا ہتھیلی کی لکیروں کے اندر جو علم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور وہ علم کسی کو دیا ہے. تو ان علوم کے ذریعے سے اگر کوئی مستقبل کا کوئی معاملہ جو ابھی موجود ہے ہی نہیں، ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ہے، اس کا معلوم کر لیتا ہے تو اس کو بھی علم غیب نہیں کہتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا پھر جو ہے نا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بس یہ کوڈنگ کری ہوئی ہے، یہ لینگویجز ڈیفائن کری ہوئی ہیں جن کے اندر اپنی اپنی تقدیر، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، کوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. اب جس کے پاس بھی اس کوڈنگ کا علم آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کسی کے پاس نہیں آتا، تو وہ پھر اس میں سے کچھ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے یا یہ ہونے والا ہے، تو اس کو غیب نہیں کہتے ہیں. بہرحال، تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حتیٰ کہ ایون ایک چیز جو بہت اہم رہ گئی، جو کہ آج کے اس دور کے حساب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ ایون جو یہ آلات کے ذریعے سے، یہ سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے ذریعے سے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیا جاتا ہے، جیسے ایکس رے، ٹھیک ہے، کوئی ٹیومر ہے وہ ایکس رے کے ذریعے سے پتا چل گیا، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، یا ایم آر آئی کے ذریعے سے، یا مائکروسکوپس اور الیکٹران مائکروسکوپس کے ذریعے سے کوئی چھپی ہوئی چیز نظر آ گئی، تو یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ غیب نہیں ہے، یہ غیب ہے ہی نہیں. بہرحال، یہ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے حاصل ہونے، واقفیت سب کچھ ہونے کے بعد بھی تخمینہ و اندازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے علم، جو یقین کا نام ہے، وہ ان میں سے کسی چیز سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ٹیومر نظر آ گیا تو بھائی، مطلب الٹرا ساؤنڈ سے نظر آ گیا ٹیومر، تو اب یہ غیب تو نہیں ہے نا. لیکن اب ٹیومر کی گروتھ کے بارے میں جو ہے نا، وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جی یہ اتنے عرصے میں اتنا بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو وہ بتاتے ہیں تو یہ ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. तो इसमें भी कोई सही पता कोई थोड़ी होता है कि ये इतने दिनों में इतना बड़ा हो जाएगा। ये तो एक इन्होंने कैलकुलेशंस करके बता दिया होता है, कभी ठीक भी हो जाता है और ज्यादातर ये जो है वो गलत ही होता है। 2 महीने आपके पास है जिंदा रहने के लिए, राइट। एक किसी के अंदर जो है वो कैंसरस ट्यूमर आ गया, तो डॉक्टर्स बता देते हैं इनके पास 4 महीने हैं। अब वो 4 महीने का मतलब जो है वो 30 × 4 एग्जैक्टली कोई थोड़ी होता है, इसका मतलब एक अंदाजा होता है। तो कोई 3 महीने बाद भी फौत हो जाता है, कोई जो है वो 6 महीने बाद भी फौत हो जाता है, और कोई फौत होता ही नहीं है। जो 4 महीने बता दिए, 3 महीने बता दिए डॉक्टर्स ने, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इलाज अता फरमा दिया, चाहे वो सूरह रहमान से इलाज किया, चाहे किसी और जड़ी बूटी से इलाज किया, और माशाल्लाह 20 साल गुजर गए अभी तक जिंदा है। तो डॉक्टर ने तो कहा था 4 महीने के बाद जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन गलत साबित हो गया ना ये। तो इल्म जो होता है ना, वो इसको नहीं कहते, ये तो तखमीने होते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन होते हैं। इल्म तो यकीनी चीज का नाम होता है, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है जिसके बारे में काफी पीछे हम डिस्कशन करते रहे कि हम जिस चीज को इल्म कहते हैं ना, अजम्पशंस को, या देखा देखी कोई काम कर लेने को, तो वो इल्म नहीं होता भाई, ठीक है। यही वजह है कि इन खबरों के गलत होने के बेशुमार वाकयात आए दिन पेश आते रहते हैं। रहा इल्म नुजूम वगैरह, सो इसमें जो चीजें हिसाबात से मुताल्लिक हैं उनका इल्म तो इल्म है, मगर वो गैब नहीं, ठीक है। वो इल्म है लेकिन वो गैब नहीं है। जैसे हिसाब लगाकर कोई ये कहे कि आज 5:41 पर आफ्ताब तुलू होगा, या फुला महीना फुला तारीख को चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होगा, जाहिर है कि एक महसूस चीज की रफ्तार का हिसाब लगाकर वक्त की तयन तयन करना, ऐसे ही है जैसे हम हवाई जहाजों और रेलों के किसी पोर्ट यानी एयरपोर्ट या सी पोर्ट या स्टेशन पर पहुंचने की खबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशंस है ना खाली, पता कोई थोड़ी होता कि अच्छा इतने बजे वो लैंड होगा, लेकिन लैंड होने से पहले उसने मिस लैंड हो जाना है और सबने मर जाना है उस प्लेन के अंदर, ये तो नहीं पता होता। ये तो नहीं बताते कि जी लैंड नहीं हो पाएगा ये प्लेन, ठीक है, वो तो कैलकुलेशन से बता देते हैं। तो इसके अलावा नुजूम वगैरह से जो खबरें मालूम करने का दावा किया जाता है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं, 100 झूठ में से एक सच निकल आना कोई इल्म नहीं है। तो वो दावा करते हैं ना, ये दावा झूठा होता है, क्योंकि इवन जो नुजूमी होते हैं उनको भी 100% इल्म नहीं होता है। तो ये पीछे जुमे के दर्स में भी काफी इसके ऊपर बात हुई थी कि इल्म नुजूम हासिल करने वाले भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि तफसीर की क्लास में बैठ के इल्म हासिल करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आप लोग इस तफसीर की क्लास में बैठी हुई हैं, तो याजुज जो है वो जो पढ़ा रहा है, तो माशाल्लाह 74 खवातीन जो हैं वो कम से कम बैठ के सुन रही हैं, लेकिन अब इनमें से कितनों को 100% बात समझ में आ रही है, ठीक है। हो सकता है एक आध हो शायद जिनको 100% बात समझ में आ रही हो, बाकी को जो है किसी को जो है वो 90% बात समझ में आ रही है, किसी को 80%, किसी को 50%, किसी को 10%, और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं ये, मुझे तो कुछ सब पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो भाई तालिबे इल्म तो हर लेवल के होते हैं ना, तो जो जहीन तालिबे इल्म है या मेहनती तालिबे इल्म है उसको ज्यादा बात समझ में आती है और बाकी उनको कम बात समझ में आती है। तो इल्म नुजूम का मामला भी ऐसा ही है, या किसी साइंस की क्लास में बैठ करके इल्म हासिल करने वाले तुलबा का भी यही मामला होता है, कोई 100% होता है, कोई 80% होता है, कोई 40% वाला तालिबे इल्म होता है ना। तो लेकिन जब पढ़ाने पर आएंगे तो दावा करेंगे जी मैंने तो पढ़ा हुआ है सब कुछ, मुझे तो सब आता है, ठीक है। तो अब ये जो उन्होंने कह दिया कि मुझे तो सब आता है, तो ये तो दावा है ना, और ये झूठा दावा है, उनको सब तो नहीं आता, ठीक है। तो यही मामला नुजूमी का भी है कि जब वो जो है वो किसी का जो है हाथ देख करके बताने वाला है कि क्या होगा तुम्हारे साथ, तो आता छाता उसको कुछ है नहीं, ठीक है, 50-50% भी शायद उसके पास इन पूरा नहीं है, दावा कर रहा है कि सब आता है। जाहिर है अब जब ये बताएगा तो ये झूठ वूठ मिला करके बताएगा ना फिर, ठीक है। अच्छा ये तो हम वैसे पढ़ चुके हैं इस जुमे के दर्स में, तो ये चीजें मुकम्मल कर चुके हैं, तो पेज नंबर 349 पे हमें पहुंच जाना चाहिए। खैर फिर भी एक छोट समरी अभी भी हमारी जारी है पीछे भी, तो ये जो आलात वगैरह हैं इनका भी यही मामला है। बहरहाल जो चीज कुरानी इस्तिलाह में गैब है, ठीक है, यानी कुरान मजीद में जिस चीज को गैब कहा गया है ना, उसका सिवाय खुदाए कुदूस के किसी को इल्म नहीं है। और जिन चीजों का इन लोगों को बाज असबाब व आलात के जरिए से आदतन हो जाता है, वो दर हकीकत गैब नहीं, बस इतनी सी बात है। ये पैराग्राफ जो पेज 347 के ऊपर है ना, ये पैराग्राफ ही अगर हमें समझ में आ जाए और याद रह जाए तो काफी हो जाता है। ठीक है, कि जो भी चीज लोगों को पता चल गई वो गायब नहीं, और जो पता नहीं है वही गायब। ठीक है, ये सोर्सेज वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सोर्स से पता चले या उस वाले तरीके से पता चले या पुराने तरीके से पता चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसी तरह किसी रसूल और नबी को बजरिया वही या किसी वली को बजरिया कशफ व इल्हाम जो गैब की चीजों का इल्म दे दिया गया तो वो गैब के वजूद से निकल गया, अब वो गैब नहीं है। वही से किसी नबी को इल्म हासिल हो गया, इवन वो भी गैब नहीं है, उसको कुरान में गैब की बजाय अम्बाउल गैब कहा गया है, यानी गैब की खबरें। अम्बा का जो लफ्ज है ये नबा से निकला, नबा का मतलब होता है खबर, जैसे कि मुतअद्दिद आयात में मजकूर है, तिलका मिन अम्बाउल गैबी नुहीहा इलैक, ये तो गैब की खबरों में से है जिनका के हम आपकी तरफ वही करते हैं, जिनको हम आपकी तरफ वही करते हैं। इसलिए आयत मज़कूरा में ला यालमुहा इल्ला हू, यानी गैब के खजानों को बजुज अल्लाह ताला के कोई भी नहीं जानता, इसमें किसी शुबा या इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी, ये प्रेयर है सबको, किसी को कुछ पूछना है तो चैट विंडो के ऊपर लिख करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इस जुमले में तो हक जल्ला शानो की एक खसूसी सिफत बताई गई है कि वो आलमुल गैब, गैब का इल्म रखने वाला, आलिम इल्म रखने वाला, आलिमुल गैब, हर गैब को जानता है। बाद के जुमलों में यानी पहली आयत का जो पहला हिस्सा है उसमें तो गैब की बात की गई है, लेकिन पहली ही आयत का जो अगला हिस्सा है ना, वो यालमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, ये सब जो है अब ये गैब की बात नहीं हो रही है, अब ये किस चीज की बात हो रही है कि उसको अब यहाँ पे शुरू किया बताना कि बाद के जुमलों में गैब के बिलमुकाबिल इल्म शहादत यानी हाजिर व मौजूद चीजों के इल्म का बयान है कि उनके इल्म में भी अल्लाह जल्ला शानहु की यह खसूसियत है कि उसका इल्म मुहीत है, कोई जर्रा इससे बाहर नहीं। मुहीत का मतलब सबका अहाता किए हुए है, सबको सराउंड किए हुए है, इसके बाहर कुछ नहीं है कि जो अल्लाह को मालूम ना हो। इरशाद फरमाया कि वही जानता है हर उस चीज को जो खुश्की में है और उस चीज को जो दरिया में है, कोई पत्ता किसी दरख्त का नहीं गिरता जिसका इल्म उसको ना हो, इसी तरह कोई दाना जो जमीन के तारीख हिस्से में मस्तूर है वो भी उसके इल्म में है, और हर तर व खुश्क में कुल कायनात का जर्रा जर्रा उसके इल्म में है और लौहे महफूज में लिखा हुआ है। खुलासा यह है कि इल्म के मुताबिक दो चीजें हक तआला की खसूसियात में से, खसूसियत का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ उसके पास हो किसी दूसरे के पास ना हो, उसको उसकी खसूसियत कहा जाता है। तो अल्लाह के इल्म की खसूसियत क्या है? एक तो इल्म गैब, एक तमाम गैब का इल्म उसके पास है, यानी वो चीजें जो अभी तक वजूद में नहीं आई या पहले वजूद में थी भी तो अब खत्म हो गई हैं, ठीक है, उनका इल्म किसी और के पास नहीं है सिवाय अल्लाह के पास है। तो एक तो ये खसूसियत हो गई अल्लाह के इल्म की, और अल्लाह के इल्म की दूसरी खसूसियत क्या है कि मौजूदात का इल्म मुहीत जिससे कोई जर्रा मख्फी नहीं है। ये दो खसूसियात सबको समझ में आ रही हैं कि अल्लाह ताला के इल्म की दो खसूसियात क्या हैं। पहली आयत में इन्हीं दोनों मखसूस सिफात का बयान इस तरह इरशाद फरमाया गया है कि उसके पहले जुमले में पहली खसूसियत का बयान है, वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु, ठीक है, पहली खसूसियत यानी इल्म गैब, और बाद के जुमलों में यानी वो यालमु मा फिल बर्र वल बहर वगैरह, तो इनमें तमाम कायनात व मौजूदात के इल्म मुहीत का जिक्र इस तरह फरमाया कि पहले इरशाद हुआ व यालमु मा फिल बर्र वल बहर, यानी अल्लाह ताला ही जानता है हर उस चीज को जो खुश्की में है और जो दरिया में है यानी तरी में है, मुराद इससे कुल कायनात व मौजूदात है, क्योंकि जो जो अल्लाह ताला ने ये आलम खल्क बनाया, आलम खल्क कहते हैं वो दुनिया जिसके अंदर हम रहते हैं और जहां तक हमारी नजर जाती है, हमें सुनाई देती हैं वो बातें, या जहां तक हम अपने किसी जहाज में बैठ करके सफर कर सकते हैं, ये सारा का सारा आलमुल खल्क है। ठीक है, तो ये जो आलमुल खल्क है इसके अंदर या तो खुश्की वाली चीजें हैं या तरी वाली चीजें। ठीक है, यानी वो जगह जहां पे खुश्क कुछ तरी नहीं है, या ये कि जहां पे तरी है। ठीक है, तो इस तरह खुश्की और तरी बोल करके पूरी कायनात मुराद लेनी चाहती है। सुबह शाम, जैसे सुबह और शाम का लफ्ज बोलकर पूरा जमाना मुराद दे दिया जाता है, क्योंकि दो ही तरह के दौर होते हैं, या तो सुबह होती है या जो है वो शाम होती है। तो ये बोलकर पूरा जमाना, और मशरक और मगरब का लफ्ज बोलकर पूरी जमीन मुराद लेनी चाहती है। इसी तरह बर्र और बहर यानी खुश्की और दरिया मुराद बोलकर मुराद उससे पूरे आलम की कायनात मौजूदात हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहु का इल्म तमाम कायनात पर मुहीत है। आगे उसकी मजीद तशरीह व तफसील। अब ये जो खुश्की और तरी है ना, आप कोई कहे कि जी जो आसमान है तो वहां पर तो खुश्की और तरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन नहीं, आसमानों पर भी खुश्की और तरी का कॉन्सेप्ट है। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम वहां तक पहुंचे ना, हम तो वहां तक नहीं पहुंचे और शायद कभी पहुंच भी ना सके। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वहां तक पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या बताया कि आसमान जो है ना, जो सात आसमान, ठीक है, वो सात आसमान जब खत्म होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है वो पानी है, उसके ऊपर पानी है। ठीक है, तो पानी जो है अगर सातों आसमान के ऊपर तक मौजूद है, तो उसे क्या पता चला कि भाई ये पानी सिर्फ अर्थ की चीज नहीं है, बल्कि ये तो आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के बाहर भी ये मौजूद है। और इवन जो आज की साइंस, जो साइंसदान जो अपने तजुर्बों और मुशाहदों के जरिए से बातें बताते हैं ना, तो वो भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि पानी जो है ना, ये बाहर से आया है, ये अंदर की चीज नहीं है, ये अर्थ की लोकल चीज नहीं है। अर्थ की लोकल चीज तो सिर्फ खुश्की है, सिर्फ खुश्की है अर्थ की, जो लोकली प्रोड्यूस चीज है खुश्की। पानी लोकली प्रोड्यूस चीज नहीं है, ये तो बाहर से कहीं से आया है। अब उसके मुख्तलिफ थ्योरीज हैं इनकी कि ऐसे आया, कोई कहता है वैसे आया, कोई कहता है जिस तरह से आया, कोई कहता है किसी और तरीके से आया, लेकिन आया बाहर से ही है, राइट? अजीब। ठीक है, तो हम तो जानते हैं इस बात, हम तो वो तो तखमीने लगा रहे हैं ना, हमें तो वही के जरिए से पता है कि पानी बाहर की चीज है। ठीक है, और वैसे भी कुरान मजीद में इसका इशारा भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में तो अर्श के पानी का जिक्र, अर्श के नीचे जो पानी की पूरी एक एक लेयर है, उसके बारे में हमें बताया हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है, इनिशियल आयत मीन्स थिंग्स दैट व्हिच आई डोंट नो बट नो बाय समवन ऑन अर्थ इज नॉट इल्मुल गैब। हाँ, व्हिच आई डोंट नो बट नो बाय समवन ऑन अर्थ इज नॉट इल्मुल गैब। अल्लाह नोज मोर देन दिस विच इज नॉट नोन बाय एनीवन। जी, किसी को भी अगर अल्लाह के अलावा इल्म हो गया किसी चीज का, तो वो गैब है ही नहीं। ठीक है, वो अब इल्म गैब होगा ही नहीं। इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अगर किसी को कुछ पता चल गया किसी बात का, तो वो अंबाउल गैब बन जाता है, वो इल्मुल गैब नहीं, वो गैब में से निकल जाती है, वो अंबाउल गैब बन जाती है, यानी गैब की कोई खबर मिल गई। ठीक है, अब हमें ये जो खबर मिल गई कि अर्श के नीचे जो है वो पानी है, आसमानों के ऊपर पानी है, तो अब ये जो हमें खबर मिल गई, तो वो अब गैब नहीं है, उस पानी का वजूद जो है वो गैब नहीं है, बिकॉज उसकी खबर हमें मिल चुकी है। ठीक है, अच्छा, आगे आगे इसकी मजीद तशरीह व तफसील इस तरह बयान फरमाई कि अल्लाह ताला का तमाम कायनात पर अहाता है इल्मी, सिर्फ यही नहीं कि बड़ी बड़ी चीजों का उस पर इल्म, बल्कि हर छोटी से छोटी मख्फी से मख्फी चीज भी उसके इल्म में, छुपी से छुपी चीज भी जो है ना वो उसके इल्म में है। फरमाया वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालम। हाँ, यानी सारे जहान में किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जो उसके इल्म में ना हो। मुराद यह है कि हर दरख्त का हर पत्ता गिरने से पहले और गिरने के वक्त और गिरने के बाद उसके इल्म में, वो जानता है कि हर पत्ता दरख्त पर लगा हुआ कितनी मरतबा उलट पुलट होगा। ठीक है, कैसे उलट पुलट होता है, फरिश्ते उलट पुलट करते हैं। ठीक है, और आम इंसान कहते हैं कि हवा उलट पुलट करती है, हम कहते हैं कि नहीं, हवा उलट पुलट नहीं करती, फरिश्ते उलट पुलट करते हैं। जिस चीज को तुम हवा कहते हो ना, वो हवा भी फरिश्ते चलाते हैं, ठीक है। और फरिश्ते हवा यानी जिनको आप कहने चले, उनसे हम इतना ले लेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल को फरिश्ता लेकर के चल रहा होता है, ठीक है। और वही मॉलिक्यूल जो है ना, वो पत्तों के ऊपर जा जब आकर के वो फरिश्ते मारते हैं, तो फिर फरिश्ते तो वो पत्ता जो है ना, फिर अपनी जगह से हिल जाता है, ठीक है। तो फरिश्ते जो होते हैं वो किसके हुक्म से काम कर रहे होते हैं? अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हवा का कोई मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल क्या चीज है? डस्ट पार्टिकल जो आपके फिजा के अंदर चल रहे होते हैं हवा के साथ, ठीक है, जिसको हवा कह देते हैं, तो असल में वो डस्ट पार्टिकल तो ये सब चीजें होती हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं। तो ये क्या चीज है? ये खुद से क्यों नहीं चल रही? ये खुद से क्यों नहीं चल रही, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस जो होती है ना, वो नाइट्रोजन गैस होती है, आई थिंक 71%। फिर 21% जो होती है वो, ना तक मुझे जितना याद पड़ा उसके हिसाब से बोलना, तो 21% जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर और भी 1% जो बाकी बच जाते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं और फलानी चीज के मॉलिक्यूल होते हैं, ढिमकानी चीज के मॉलिक्यूल। तो ये खुद क्यों नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। इनको फरिश्ते लेके क्यों चल रहे होते हैं? खुद क्यों नहीं चल सकते हैं मॉलिक्यूल्स? इसलिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के हों, नाइट्रोजन के हों, ऑक्सीजन के हों, या और जो जो गैसेस होती हैं उनके हों, ये खुद इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि ये अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जिनको जमादात कहा जाता है, जमादात, ठीक है। ये जमादात जो होते हैं ना मखलूक, ये खुद से नहीं चल सकते, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही बनाया। जैसे पत्थर, पत्थर जिस तरह से जमादात में से है, तो पत्थर जहां पे पड़ा रहे ना, तो वो पड़ा ही रहेगा, वो हिल नहीं सकता वहां से, ठीक है। तो अब तो आप उसको हिलाएंगे तब वो हिलेगा ना, वरना वो नहीं हिलेगा, ठीक है। तो आप उसको पैर से मारेंगी तो वो हिल जाएगा, वरना वो नहीं हिलेगा। जिस तरह आप पैर से मार के पत्थर को हिलाती हैं, पत्थर खुद से नहीं हिल सकता, उसी तरीके से आपकी तरह और कौन है जो कि उसको हिला सकता है, ठीक है। जानवर, जानवर पत्थर को हिला सकता है ना, ठीक है। तो जानवर जो है वो जमादात में से नहीं है, जानवर जो है वो हैवानात में से है, हैवानात पत्थर को हिला सकते हैं। हत्ता के नबातात वो भी पत्थर को हिला सकते हैं ना, ठीक है। जैसे किसी कोई पत्थर पड़ा हुआ, उसके नीचे एक बीज है, ठीक है। तो बीज में से जब पौधा निकलता है, तो वो पौधा जो है वो पत्थर को अपने ऊपर से हटा देता है, ठीक है। पत्थर मूव हो जाता है, कैसे मूव हुआ? पौधे ने उसको पुश किया। और पौधा किस किस्म की मखलूक है? नबातात, ठीक है। इंसान, इंसान भी अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो कि खुद से मूव कर सकती है, अपने इल्म और इरादे से मूव कर सकती है, वो जो है वो पत्थर को हिला सकती है। उसी तरह से जिन, जिन भी पत्थर को हिला सकते हैं। और उसी तरीके से आखिरी कौन सी मखलूक रह गई? नबातात भी कवर कर लिया हमने, हैवानात भी कवर कर लिया हमने, इंसान भी कवर कर लिया हमने, जिन भी हमने कवर कर लिए कि भाई ये सब के सब पत्थर को हिला सकते हैं। आखिरी चीज कौन सी रह गई जो पत्थर को हिला सकती है? आप बता देंगे जब तक इनका सवाल पढ़ लेते। वॉट इज अहकाम फॉर अस इन दिस, इन विच पार्ट वी कैन इंडल्ज, वेयर वी हैव टू स्टॉप, इन विच पार्ट वी कैन इंडल्ज, वेयर वी हैव टू स्टॉप। इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है? इसमें हमारे लिए हुक्म क्या है? अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब अगर कोई दे दे। पत्थर को क्या क्या चीजें हिला सकती हैं? पौधे हिला सकते हैं पत्थर को, जानवर हिला सकते हैं हैवानात, राइट, इंसान हिला सकते हैं, जिन हिला सकते हैं, और कौन हिला सकता है पत्थर को? सवाल इसलिए पूछा है कि पता चल जाए क्या किसके सर पे से गुजर रहा है और किसके सर के अंदर दाखिल हो रहा है, ठीक है। जजाकुम अल्लाह, बस ठीक है। फरिश्ते, ठीक ठीक है, अल्लाह की आखिरी मखलूक जो बाकी बच गई थी वो फरिश्ते थे। तो फरिश्ते पत्थर को हिला सकते हैं ना, तो फरिश्ते जो है वो जमादात। पत्थर क्यों क्यों जिक्र किया था पत्थर का, क्योंकि जमादात वो खुद से नहीं हिल सकती, तो उनको फरिश्ते हिला सकते हैं, इंसान हिला सकते हैं। तो इसी तरीके से जो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी फरिश्ते हिलाते हैं, जिन ये वाला काम नहीं करते, जिनों के पास और बहुत सारे काम है। इंसान इंसान के पास ही खुद ये और भी बहुत सारे काम है करने के, तो वो बैठ करके हवाओं को नहीं हिला रहा होता, ना वो हिला सकता है। एनीवे, तो अब इसमें हमारे लिए हुक्म क्या है? हमारे लिए हुक्म ये है कि हम जो है ना वो इल्म हासिल करें जो हमारे लिए फायदेमंद इल्म है, और जो इल्म हमारे लिए फायदेमंद नहीं है तो हम उसकी खोज में अपना वक्त जाया ना करें। ठीक है, जो फायदेमंद इल्म है उसमें सबसे पहला इल्म ये है कि अल्लाह ताला के अहकाम क्या है, तो वो इल्म हम हासिल करें अल्लाह से। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा इल्म क्या है कि अल्लाह ताला के अहकाम को अदा करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हमारे लिए इसके अंदर क्या हुक्म है कि हम इन चीजों का इल्म हासिल कर कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है और अल्लाह ताला का हुक्म के ऊपर अमल कैसे करें। ठीक है, बस इसके अंदर सारी चीजें शामिल हो जाती है, अब तक साइंस का भी इल्म इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, और जो चीज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो उसके ऊपर अपने टाइम जाया ना करें। अच्छा, और फिर दूसरा इसके अंदर हुक्म यह है कि इससे जो है ना वो हमें जो अल्लाह ताला की अजमत का पता चल रहा है, अल्लाह ताला की कुदरत का पता चल रहा है, तो अब अपने दिन भर के जो मामलात हमें पेश आते हैं तो उनके अंदर हम इस बात को याद रखें। ठीक है, कल ही जो है वो किसी को डांट पड़ी है आप में से, ठीक है, कि वो ना अपने किसी रिश्तेदार खातून के बारे में ओवर ऑब्सेस्ड, ठीक है ना, वो ऐसी है, वो ये कर देगी, वो कर देगी, उसको ये आता है, उसको वो आता है, वो ये है, वो है, ठीक है ना। तो हमने उनको ये लिखा कि आप ओवर ऑब्सेस्ड हैं उन खातून से, यू नीड टू ऑब्सेस योर सेल्फ विद अल्लाह एंड डी ऑब्सेस योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, कि वो तो मैं उसके होते हुए कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह के बंदे तुमने क्या करना है, अल्लाह की बंदी तुमने क्या करना है, अल्लाह ने करना है, राइट। तो अल्लाह के सामने उस बंदी की कोई हैसियत है, वो कुछ कर सकती है अल्लाह के सामने, तो तुम अल्लाह को मनाओ, अल्लाह ताला के साथ लगो ना। ठीक है, लेकिन नहीं, हमारे दिमाग पे बंदे सवार हो जाते हैं, बंदे सवार, ओहो अब तो हम उनके ख्याल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते ना। कुरान मजीद किस लिए हम पढ़ रहे हैं? ताकि हम बंदों के ख्याल से बाहर निकलें और अल्लाह ताला का ख्याल अपने अंदर बसाएं, कि अगर हम अल्लाह को राजी करेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, सब सब असलाह कर देगा। तो ये हमारे लिए हुक्म। अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं कि कितनी मरतबा उलट पुलट होगा और कब और कहाँ गिरेगा, फिर वो किस किस हाल से गुजरेगा। तो ये सब कह के हजरत ने लिखा कि गिरने का जिक्र शायद इसलिए किया गया है कि उसके तमाम हालात की तरफ इशारा हो जाए, क्योंकि पत्ते का दरख्त से गिरना उसके नशो नुमा और नबाती जिंदगी का आखिरी हाल, आखिरी के लिए दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, इंतहाई। ठीक है, इंतहाई हाल यानी उसकी इंतहा यह है कि बस वो मर गया। ठीक है ना, क्योंकि जब पत्ता गिर जाता है तो फिर वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर वो कॉम्पोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद के अंदर जो है ना वो इसी तरीके से इंतहाई हालात का जिक्र कर देते हैं, तो उसमें फिर जो इब्तदाई हालात होते हैं और जो मुतवसत हालात होते हैं यानी दरमियान के जो हालात होते हैं ना, इब्तदा के हालात और दरमियान के हालात, वो सब कवर हो जाते हैं जब इंतहा का जिक्र कर दिया जाता है। इंतहा के अंदर फिर हर चीज शामिल हो जाती है, इब्तदा भी शामिल हो जाती है और दरमियान का दौर भी सारा का सारा शामिल हो जाता है। तो आखिरी हाल का जिक्र करके तमाम हालात की तरफ इशारा कर, ठीक है, जैसे जुमे के दरस में भी बताया था कि अल्लाह ताला मोमिनीन का तस्करा करते थे, तो मोमिनीन का तस्करा से फिर सारे जो
जो कामिल मोमिनीन है ना वो फिर उसके अंदर आ जाते हैं कि भाई कामिल मोमिनीन जो है ना वो उनके साथ अल्लाह ताला ऐसा ऐसा मामला करते हैं। उसी तरह काफिरीन का जब तस्करा करते हैं तो काफिरीन में से भी जो सबसे कामिल काफिरीन होते हैं इंसानों में, जैसे फिरौन है, हामान है, अबू जहल है और अबू लहब है, इन सब का तस्करा जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। ठीक है, तो कामिल काफिरीन यानी जो काफिरीन की इंतहा को पहुंचे हुए थे जिन्होंने अल्लाह के नबियों की मुखालफत की, ये सारे इंतहा को कैसे पहुंच गए थे? कारून, हामान, नमरूद और फिरौन और अबू जहल और अबू लहब। ठीक है, ये इंतहा को कैसे पहुंच गए थे अपने कुफर के अंदर? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबियों की मुखालफत की। तो सबसे बेहतरीन अल्लाह के बंदों की जिन्होंने मुखालफत करी वो सबसे बदतरीन बन गया। अब दुनिया में कोई भी दूसरा काफिर जो है ना वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी काफिर आ जाए दुनिया के अंदर, कितने ही हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दे, राइट, कितने ही जुल्म कर दे, वो अबू जहल का मुकाबला नहीं कर सकता, वो अबू लहब का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला के यहाँ अच्छे और बुरे होने के क्राइटेरिया क्या है, ये नहीं कि कितने लोगों को उसने जिंदा किया और कितने लोगों को उसने मारा, ये नहीं है, बल्कि अल्लाह के किस बंदे की उसने मुखालफत करी, किस बंदे की? अगर अल्लाह के महबूब की मुखालफत करी है तो इससे ज्यादा बुरा और कोई नहीं। और अगर अल्लाह के महबूब की मदद करी है तो इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। अब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला जो है वो सबसे अच्छे इंसान बन गए, ठीक है, नबियों के बाद सबसे अच्छे इंसान सिद्दीक अकबर रजी बन गए, ठीक है, और सबसे बुरा इंसान अबू जहल और अबू लहब बन गया। उसी तरह से मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह ताला के बड़े खुसूस खुसूसी बंदे थे, उनका जिसने दुश्मनी करी उनके साथ वो भी सबसे बड़ा काफिर बन गया, फिरौन। ठीक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिसने दुश्मनी करी नमरूद, वो भी सबसे बुरा जो है वो इंसान बन गया। ठीक है, आज का कोई बंदा जो है वो नमरूद का और फिरौन का और इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता बुराई के अंदर। इसके बाद इरशाद फरमाया, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, यानी हर वो दाना जो जमीन की गहराई और अंधेरी में कहीं पड़ा है वो भी उसके इल्म में है। पहले दरख्त के पत्ते का जिक्र किया जो आम नजरों के सामने गिरता है, हमारे आम जो है वो मुशाहदे में भी दरख्त के पत्ते आ जाते हैं, लेकिन हब्बा जो होता है दाना, अब वो चाहे वो कॉर्न का दाना हो, मकई का दाना जो अच्छा खासा मोटा सा होता है, या जो है वो कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो, कोई वायरस हो, ये सब दाने के अंदर शामिल हो सकती है। हर चीज जो कि जो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर एटॉमिकल, ठीक है, एटॉम एटम का जो लफ्ज है ना, ये अब पहले तो एक साइंसी इस तरह थी ना एटम, कि जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको एटम कहते हैं। लेकिन अब ये जो है ना लफ्ज एटम जो है ये एक्चुअली अंग्रेजी की एक इस्तेलाह बन गई है, अंग्रेजी की इस्तेलाह, ये अब उस एटम को नहीं है कहते उसको, यानी उसको भी वो तो है, खैर ठीक है जी, जिसके अंदर न्यूक्लियस और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसको तो एटम कह ही देते हैं, लेकिन ये एक इस्तेलाह बन गई है। इस्तेलाह से मुराद क्या है कि अब ये एक जनरल सी चीज बन गई है एटम का लफ्ज। अब हर उस चीज को एटम कहते हैं जो कि अकेली होती है, हर उस चीज, हत्ता कि अगर कोई इंसान भी अकेली जिंदगी गुजार रहा है ना तो उसको भी कहेंगे ये एटॉमिक जिंदगी गुजार रहा है, यानी ये तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है। हत्ता के मगरबी मुआशरे के जो लोग हैं उनके जो मगरबी मुफक्किरीन है ना, तो वो अब ये कहते हैं, बल्कि अब तो नहीं, आज से 20-25 साल पहले से मैंने जो जिसका मैंने पढ़ा था तो वो उसने आज से कोई 30 साल पहले शायद मजमून लिखा था, उसमें उसने लिखा था कि हमारी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है तो उसके अंदर पीपल आर नाउ लिविंग एटॉमिकल लाइफस्टाइल्स, ठीक है, एटॉमिकल यानी तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, जब से देहातों से निकल निकल करके शहरों की तरफ मूव हुए हैं, कि शहरों में इंडस्ट्रीज होती हैं, शहरों के अंदर जो है वो जॉब्स होती हैं, तो अब इनकी जिंदगियां एटॉमिकल जिंदगी, तन्हाई पर तन्हाई की जिंदगियां हो गई। तो इसी को जो है फिर हब्बा कहा जा सकता है अरबी जुबान के अंदर। तो भी चीज तनहा अकेली होगी उसको हब्बा कहा जाएगा। तो ऐसी कोई चीज जो किसी जमीन की गहराई और अंधेरी में भी मस्तूर हो जाती है ना, छुप जाती है, तो उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं ना। इसके बाद फिर तमाम कायनात पर इल्म बारी ताला का हावी होना, तर और खुश के अनवान से जिक्र फरमाया और फरमाया कि ये सब चीजें अल्लाह के नजदीक किताब मुबीन में लिखी हुई हैं। किताब मुबीन से मुराद बाज हजरात मुफस्सरीन के नजदीक लोहे महफूज है, और बाज ने फरमाया कि इससे मुराद इल्म इलाही है, और उसको किताब मुबीन से इसलिए ताबीर किया गया है कि जैसे लिखी हुई चीज महफूज हो जाती है, इसमें सहव व नसियान की राह नहीं रहती, इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहु का ये इल्म, इल्म मुहीत तमाम कायनात के जर्रे जर्रे का सिर्फ तखमीनी नहीं बल्कि यकीनी इल्म है, यकीनी इल्म। तो अल्लाह को तो लिखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तो शायद इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो ही ना जिस तरह से कि हम लिखने को समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को जो है ना वो हमारे दरमियान ऐसे राइज फरमा दिया कतबा कि हम उसको फिर अब कागज के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या लैपटॉप की जो आपकी डिस्क होती है उसके ऊपर लिखने के लिए कतबा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये बात समझा दी कि देखो तुम्हें जो मैंने लिखने की तालीम दी है ना कि तुम कलम से कोई चीज लिखते हो या टाइप करके कोई चीज लिखते हो, तो ये बड़ी अहम है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं तो नहीं भूलता, मुझे तो लिखने की हाजत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तो निस्यान है ही नहीं, भूल चूक है ही नहीं, लेकिन मैंने भी अपने लिए कतबा का लफ्ज इस्तेमाल, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने लिख लिया। ठीक है, और तुम्हारे दरमियान इस लफ्ज कतबा को राइज कर दिया कलम के जरिए से लिखने को। तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम तो बदरजाए उला भूल के वजह से, निसियान की वजह से मोहताज हो इस बात के कि तुम लिख लिया करो चीजें। ठीक है, इसी वजह से जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को कह कह के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते रहते हैं कि भाई आप खाली लेक्चर को जो है वो सिर्फ सुना नहीं करें, सुना तो करें कानों से लेकिन लिख भी लिया करें, कम से कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया करें या इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लिख लिया करें, तो फिर आपको जो है ना वो इल्म याद रहेगा और ज्यादा समझ में भी आएगा इस तरीके से। अच्छा, टाइम तो वैसे पूरा हो गया, थोड़ा सा और आगे पढ़ने, ये तो जुम्मे के 10 में भी यहाँ तक हो गया था, जल्दी से कुछ और पढ़ लेते हैं, ये बड़ी अहम बात असल में आ रही है आगे। तो फरान मजीद की बहुत सी आयात इस पर शाहिद है कि इस तरह का इल्म मुहीत जिससे कायनात का कोई जर्रा और उसका कोई हाल खारिज ना हो, यानी एग्जेम्प्ट ना हो, ये सिर्फ जाते हक जल्ला शानों के साथ मखसूस है। तो अब कुरान मजीद की 3 आयात बल्कि 4 आयात में यहाँ नकल फरमाई, ये सूरह लुकमान में है, तर्जुमा खाली पढ़ लेते हैं फिलहाल वक्त की वजह से, कि यानी अगर कोई दाना राई के बराबर हो फिर वो पत्थर के जिगर में पैवस्त हो जाए, यानी पत्थर के अंदर चला जाए वो दाना, या आसमानों में या जमीन में कहीं भी हो, अल्लाह ताला उन सबको जमा कर लेंगे, बेशक अल्लाह ताला लतीफ और हर चीज से खबरदार है। ठीक है, यानी खाली मालूम नहीं कि पत्थर के पेट में दाना पड़ा हुआ है, बल्कि अल्लाह ताला उसको जमा भी करेंगे। ठीक है, यानी सबको एक जगह पे इकट्ठा भी करेंगे, और अल्लाह ताला इस तरह लतीफ और खबीर है, यानी बारीक से बारीक चीज के बारे में जानने वाले और उसका कंट्रोल करने वाले ऐसे हैं अल्लाह ताला। आयतुल कुर्सी, ठीक है, उसमें है यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइ मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, यानी अल्लाह ताला सब इंसानों के अगले और पिछले सब हालात से वाकिफ हैं, और सारे इंसान मिलकर उसके इल्म में से किसी एक चीज का भी इहाता नहीं कर सकते बजुज इतने इल्म के जो अल्लाह ताला किसी को देना चाहे। ठीक, जिसको देना चाहे तो उसको अल्लाह ताला दे देते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा ही देते हैं अपने इल्म का। सूरह यूनुस में है, वमा यअज़ुबु मिन रब्बिका मिन मिथक़ाल ज़र्रतिन फिल अर्ज़ि व ला फिस समा, यानी एक जर्रा के बराबर भी कोई चीज जमीन व आसमान में आपके रब के इल्म से जुदा नहीं। ठीक है, या अजूबू, ठीक है, आजबा या अजीबू, ये अरबी जुबान का जो एक वर्ब है, तो वो इस्तेमाल किया कि ये जो है ना, ये किसी चीज के किसी चीज से दूर होने के लिए, जुदा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह के इल्म से कुछ भी जुदा नहीं है, कुछ भी दूर नहीं है। अजाब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अल्लाह ताला ने इसको इस्तेमाल किया तकलीफ के लिए। अजाब जब आता है ना किसी के ऊपर, तो क्या होता है इसका मतलब? अल्लाह ताला की जो नेमत उसके पास है वो उससे दूर कर दी जाती, नेमत दूर कर दी जाती, इसी को अजाब का, ठीक है? तो अजाब दूर हो जाता। अच्छा, सूरह तलाक में है, वअन्ना अल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शयइन इल्म, यानी अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर मुहीत है। इसी तरह बेशुमार आयात में ये मजमून मुख्तलिफ उनवानात से आया हुआ है। खुलासा ये है कि इन आयात में बड़ी वजाहत और सराहत के साथ ये बयान फरमा दिया गया है कि गैब का इल्म, जिसको कुरान मजीद में गैब कहा गया है और उसकी तफसीरों पर गुजर चुकी है, या तमाम कायनात का इल्म मुहीत सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू की मखसूस सिफत है। सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू, यानी इल्म मुहीत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, और इल्म गैब अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास है। तो आगे उसके ऊपर फरमाते हैं कि किसी फरिश्ते या रसूल के इल्म को, फरिश्ते या रसूल के इल्म को इस तरह हर जर्राए कायनात पर मुहीत समझना, वो ईसाइयों की तरह रसूल को खुदा का दर्जा दे देना है। ईसाइयों की तरह रसूल को खुदा का दर्जा दे देना है और खुदा ताला के बराबर करार दे देना है, जो बतस्रीह कुरान करीम शिर्क है। सूरह शुरा में शिर्क की यही हकीकत बयान फरमाई गई है, यानी कयामत के रोज मुशरिकीन कहेंगे कि बखुदा हम सख्त गुमराही में थे कि तुमको, यानी बुतों को, रब्बुल आलमीन के बराबर कर देते। वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन, हम खुली गुमराही में थे, बेशक हम खुली गुमराही में थे, ये ऐसे कहेंगे वो लोग। इज नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, कि जब हम तुमको, यानी अपने जिन्होंने जो भी खुदा बनाए हुए होंगे ना, उनको ये मुखातब होके कहेंगे कि हम तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर सराबर करते थे। नुसव्वीकुम, सव्व युसव्वी, ठीक है, यानी इक्वेट करते थे तुमको हम रब्बुल आलमीन के साथ। क्या मतलब इक्वेट करते थे? ये अपने किसी भी बुत को खालिक नहीं कहते थे, कि इस बुत ने तख्लीक किया है सब कुछ, ठीक है, हत्ता के राजिक भी नहीं कहते थे, राजिक भी नहीं कहते थे बुत को, ठीक है, बल्कि क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ही राजिक है, अल्लाह ताला ही खालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ये सिफत अब इनको दे दी है, अब जो है ना ये रिस्क देते हैं। पहले तो अल्लाह ताला देता था, लेकिन अल्लाह ताला ने गोया के डेलीगेट कर दिया, ठीक है, तफवीज कर दिया अपने सिफत को इनके पास, अब ये देते हैं, अब हमें रिस्क मांगना है तो हमें इनसे मांगना पड़ेगा, अल्लाह से नहीं मांगेंगे, इनसे मांगेंगे, क्योंकि ये देते हैं। ये है शिर्क, और इसी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का अजाब होगा, और इसी का जिक्र यहां पर इस आयत में भी है और दूसरी आयत में, ठीक है। तो फरिश्ते को या रसूल को इस तरह का जो कोई भी सिफत अल्लाह ताला की इस तरह से दे दी जाए कि ये जो है ना, बस अब अल्लाह ताला ने इनको तफवीज कर दिया है, अब इन्हीं से हमने मांगना है, यही जो है वो उसकी कुल अथॉरिटी रखते हैं, ये जो है वो फिर शिर्क हो जाता है। और यही जो है वो ईसाई ईसा अलैहि सलाम को इसी तरह की सिफत दे, ठीक है। अब इन्होंने जो ईसा अलैहि सलाम की जो बात करी, तो उसमें भी एक बड़ी बहुत ही, यानी कि अजीब इशारा है इसके अंदर, ठीक है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फरिश्ते या रसूल को अगर इस तरह का मुकाम दे दिया जाए जो कि अल्लाह का मुकाम है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुलू कर, गुलू कर, यानी जो मुकाम उसका था, फरिश्ते का क्या मुकाम था कि वो गुनाहों से पाक है, अल्लाह ताला का हुक्म अदा करता है और उसमें नाफरमानी नहीं करता, नूर से बना हुआ है फरिश्ता, ये उसका मुकाम है। आपने उसको जो है वो कोई दूसरा मुकाम दे दिया कि वो जो है वो रिस्क भी देता है, वो जो है वो रिस्क दुनिया में जो है वो औलाद देता है या ये इस तरह की कोई काम, भाई ये तो अल्लाह ताला करते हैं, ये फरिश्ता तो ये काम नहीं करता। तो अब आपने उसकी सिफत में गुलू कर लिया, हद से बढ़ा दिया, ठीक है। उसी तरह रसूल का जो काम है, तो रसूल का काम क्या कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं और बहुत ही अमानतदारी के साथ पहुंचाते हैं, और अल्लाह ताला की इबादत में कमाल रखते हैं, अल्लाह ताला के कामिल बंदे हैं। इबादत में कमाल का मतलब अल्लाह ताला के कामिल बंदे, ठीक है, गुनाह नहीं करते हैं, ठीक है, और बशर हैं, इंसान हैं, इंसान के अलावा कोई दूसरी मखलूक नहीं है। ये रसूल का मुकाम है, ठीक है। वो बेहतरीन अखलाकी सिफात रखते हैं, वो बेहतरीन खैरख्वाही का जज्बा रखते हैं, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत की शिद्दत अपने अंदर रखते हैं, अल्लाह ताला की खशियत की शिद्दत अपने अंदर रखते हैं। ये रसूल का मुकाम, ठीक है। अब उससे जब उनको बुलंद कर दिया ना, तो ये रसूल के अंदर गुलू करना, ठीक है। तो ये गुलू जो है, ये फिर इंसान को शिर्क की तरफ ले जाता है। ईसाइयों ने इतना गुलू किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला का बेटा करार देना शुरू कर, और यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ही ईसा है और ईसा ही अल्लाह है, इस किस्म की बात करनी शुरू करें, जो कि सूरह मायदा की तफसीर के अंदर अभी हम रिसेंटली पढ़ भी चुके हैं बर्बर क्लास के अंदर। तो ये जो गुलू किया जाता है ना, तो फिर ये क्या है, अब ये फरिश्ता और रसूल, ठीक है। तो इसके लिए हम फारसी जुबान में और उर्दू जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, उससे फिर हमें ये चीज ज्यादा समझ में आएगी कि इनके लिए बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्ग, ठीक है। फरिश्ते के लिए भी बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रसूलों के लिए भी बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और बुजुर्ग का लफ्ज जो है फिर अपने दौर के किसी बुजुर्ग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, किसी शेख के लिए, किसी पीर के लिए, किसी मौलवी के लिए, किसी आलिम के लिए, या किसी जो है वो जाहिद के लिए, किसी नेक इंसान के लिए, उनको भी बुजुर्ग कहते हैं। तो भाई किसी भी बुजुर्ग को जो है ना, वो अगर खुदा की कोई सिफत देने की कोशिश करेंगे तो वही गुलू हो जाएगा, और ये गुलू अगर मजीद बढ़ गया तो ये शिर्क बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नहीं करना है। देखिए, बुजुर्ग का लफ्ज क्यों बड़ा अहम है, क्योंकि बुजुर्गी जो होती है ना, बुजुर्गी जो होती है, इसका ताल्लुक जो है वो दीन के साथ होता है, ठीक है, इसका ताल्लुक जो है वो दीन के साथ होता है। मादियत के साथ बुजुर्गी का ताल्लुक नहीं होता। जो मादियत परस्त लोग होते हैं ना, उनके नजदीक बुजुर्गों की कोई है अहमियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। बुजुर्गों की हैसियत किनके किनके करीब होती है, किनके निगाहों में बुजुर्गों की हैसियत, जो दीनदार हो, ठीक है। दुनियादार इज इक्वल टू मादियत परस्ती, मादियत परस्त, मटीरियलिस्ट, ठीक है। वो तो बिल्कुल बुजुर्गों की नफी कर देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो होते ही कोई नहीं, कोई चीज नहीं है ना, बुजुर्गों की तो कोई हैसियत नहीं है। वो उस एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि जिसमें कि वो बुजुर्गों की नफी कर देते हैं, ठीक है। जो शरीयत और सुन्नत के पाबंद होते हैं, वो बुजुर्गों को मानते हैं और बुजुर्गों को उनके मकाम पे रखते हैं, जैसा मकाम शरीयत ने बताया है वो उनको उस मकाम पे रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है, उनकी जो है वो खिदमत भी करते हैं और उनसे सीखते भी हैं, उनकी इत्तबा भी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें शरीयत में कहीं है, फत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, ठीक है, कि जो मेरी तरफ इनाबत करने वाले बुजुर्ग हैं, राइट, जो मेरी तरफ इनाबत करने वाले लोग हैं वही तो बुजुर्ग होते हैं, तो उनकी तुम इत्तबा करो। तो बुजुर्गों की इत्तबा करना ये कुरान मजीद का हुक्म है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यशकुर इन्नास लम यशकुर अल्लाह, कि जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो भाई बुजुर्ग कौन होते हैं, जो हमें दीन सिखाते हैं, जो हमें अल्लाह ताला का दर दिखाते हैं, अल्लाह ताला से मांगना सिखाते हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज जो हमें सिखाई है, अपने अल्लाह से मांगना, तो अब हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करें भाई। अम्मी का तो शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने खाना खिलाया, राइट, अब्बू का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो है जूते ला करके दे दिए, और जिन्होंने जन्नत का रास्ता दिखाया तो उनका हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया, यानी जिस इंसान ने उसके साथ एहसान का मामला किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, ठीक है। तो ये जो बुजुर्ग है ना, उनको मुकाम पे रखना क्या है, ये शरीयत है। बुजुर्गों की बिल्कुल नफी करना क्या है, ये मादियत परस्ती है। और बुजुर्गों को गुलू, उनको अपने मुकाम से ऊंचा बनाने की कोशिश करना, तो ये जो है वो गुलू और शिर्क हो जाए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा कि देर मस्ट बी लेवल्स ऑफ बुजुर्ग, लाइक वी कैन नॉट कंपेयर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद एनी अदर बुजुर्ग, ऑफ कोर्स, ठीक है। बुजुर्ग के लेवल्स हैं, नबी अलैहिस्सलाम को जो लेवल है उस लेवल पे तो कोई और रसूल भी नहीं, राइट, क्योंकि इमामुल अंबिया तो नबी अलैहिस्सलाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी आप नबी अलैहिस्सलाम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये अब आज के जमाने में कोई बुजुर्ग है, ठीक है, या कोई आपके टीचर है तो टीचर भी बुजुर्ग हैं, तो भाई वो टीचर जो है वो अब बड़े टीचर के बराबर नहीं हो सकता, बड़ा टीचर जो है वो उससे बड़े टीचर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो गुलू करना जो है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जायज नहीं। जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, बाद अज खुदा तू ही बुजुर्ग, खुदा के बाद जो मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है किसी और को वो मुकाम नहीं, लेकिन खुदाई सिफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो देखें ये बात हमने करी क्यों है, बस ये करके इंशाल्लाह क्लास खत्म करेंगे, वैसे ही 15 मिनट आगे हो गए। वो ये है कि हम जिस दौर जिस जमाने में रह रहे हैं ना, ये बात से मुराद वो वाली बात कि जी जो मादियत परस्ती होती है ये बिल्कुल बुजुर्गों की नफी होती है, जो बुजुर्गों को उनके मुकाम पे रखना होता है ये शरीयत और सुन्नत कहलाती है, और जो बुजुर्गों को गुलू करना होता है ना, ये जो काम होता है ये दीनी शक्ल में ये काम होता है लेकिन दरअसल ये धोखा होता है, ये दीन की शक्ल में धोखा होता है जब बुजुर्गों को गुलू के साथ गुलू किया गया, ये दीन की शक्ल का धोखा होता है, ये मादियत परस्ती नहीं होती, ये दीनी शक्ल का धोखा होता है। हम जिस दौर जमाने में रह रहे हैं ये है फितने दज्जाल का जमाना, ये आपने सुना होगा, कान भी पक गए होंगे आपके सुन सुन को, ठीक है। फितने दज्जाल के जमाने में इसकी रेलेवेंस क्या है कि जो दज्जाल होगा ना, हदीसे मुबारका से जो उसकी डिस्क्रिप्शन पता चलती है वो क्या, कि वो जो दज्जाल होगा वो दज्जाल एक मटीरियलिस्ट शख्सियत नहीं होगा, वो एक मटीरियलिस्ट शक्ल शख्सियत नहीं होगा जिसको कि हम दुनियादार कह देते हैं, नहीं, बल्कि वो दज्जाल जो है वो एक दीनी शख्सियत होगी, दीनी शख्सियत होगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, जाहिर है वो शरीयत सुन्नत पर तो नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी दीनी शख्सियत हो, तो फिर वो कैसी दीनी शख्सियत होगी, वो ऐसे गुलू वाली दीनी शख्सियत, धोखे वाली दीनी शख्सियत, यानी वो दीन के रास्ते से धोखा देगा, दीन यानी अपने आप को दीनदार बना करके पेश करेगा, हत्ता के बहुत सारे लोग उसको अपना मुक्तदा बना लेंगे, वो दीन की बात करेगा लोग उसको मुक्तदा बना लेंगे, लेकिन उसका जो दीन होगा ना उसके अंदर ईमान नहीं होगा, वो जाहिरी दीनदारी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से कि इंसान ईमान से महरूम हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जैसे आपने भी लिखा मसीहा, और हदीस मुबारक में उसके लिए मसीहुद्दज्जाल का इस्तेमाल, और यहां पर भी हमने जो पढ़ा ईसाइयों की तरह रसूल को खुदा का दर्जा दे देना। अच्छा, दज्जाल का मुकाबला कौन करेंगे आकर के, दज्जाल को मारेंगे कौन, ईसा अलैहिस्सलाम, राइट, दज्जाल को खत्म करने के लिए भी कौन आएंगे, जो कि हकीकत में रूहानियत के आला तरीन मनसब के ऊपर पाए जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो कोई मटीरियलिस्ट तरीके से भी दज्जाल इस दुनिया से नहीं जाएगा, बल्कि खालिसतन रूहानियत के रास्ते से जो है ना उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि उसने धोखे की रूहानियत जो है वो इस दुनिया के अंदर बनाई हुई होगी। तो इन शॉर्ट दज्जाल जो है वो भी एक बुजुर्ग होगा, दज्जाल जो है वो भी एक बुजुर्ग होगा, लेकिन हकीकी बुजुर्ग नहीं होगा, धोखे का बुजुर्ग।
फितने दज्जाल के जमाने में ना इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि किसी की बुजुर्गी को हमने जो मेजर करना है ना, तो वो हमने उसकी जाहिरी बुजुर्गी के ऊपर मेजर नहीं करना, बल्कि शरीयत और सुन्नत के उसूलों के ऊपर मेजर करना। अगर वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक मामला है तब तो वो बुजुर्ग है, खाली चिकनी चपड़ी बातें या जो है वो बहुत ही कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किस्म की बातें और उसकी जाहिरी दीनदारी, ये तो भाई दजल भी हो सकता है, ये तो दजाल भी हो सकता है। ठीक है, बज़ाहिर दीनदार होगा, उसका जाहिर सुन्नत के मुखालिफ होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं समझिए वो दाढ़ी मुंडा होगा। नहीं, दाढ़ी मुंडा होना तो कोई जरूरी नहीं है, मोस्ट लाइकली लगता तो ऐसा है कि वो बड़ी अच्छी शरीयत वाली दाढ़ी रखी हुई है, शरीयत वाली दाढ़ी, शरी दाढ़ी जिसको कहते हैं, लगता है ऐसा ही है। अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने दज्जाल को देखा नहीं, ठीक है, और ना हमें कोई शौक है देखने का, लेकिन जो अहवाल नजर आ रहे हैं ना उसमें यही है कि क्लीन शेव्ड दज्जाल का होना मुश्किल है, दाढ़ी वाले दज्जाल का होना मोड़। ठीक है, तो अपने आप को इससे आगे निकाल रहे हैं, ये है ना, दाढ़ी दाढ़ी हो गया तो सारा दीन हो गया। और भाई क्या यहूदी की दाढ़ी नहीं होती, सिख की दाढ़ी नहीं होती आजकल, तो जो है वो अमेरिका के अंदर भी जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की दाढ़ियां रखने वाले काफिर भी मौजूद हैं। भाई आगे देखना शुरू करें ना, अब दाढ़ी के ऊपर फंस गए कि भाई दाढ़ी है तो सब कुछ है, दाढ़ी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना, दाढ़ी है तो सब कुछ है वाला मामला नहीं है। ठीक है, चलें यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।